मुस्कुराते हुए अभिमान जी अंदर आए और अंदर आकर अपने बेटे अरमान की ओर प्यार भरी नज़रों से देखकर बोले, क्या हुआ बेटा? अगर तुमसे ये धोती नहीं पहनी जा रही तो तुम अपने पिता को भी तो बुला सकते थे ना। मैं हूं ना, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये बोलकर अभिमान जी ने अरमान के सर पर प्यार से हाथ फेरा और जल्दी ही अरमान को बड़ी अच्छी तरह से धोती पहना दी। कहीं ना कहीं अपने पिता के इतने करीब होने पर, अपने पिता द्वारा उसका ये छोटा सा काम किया जाने पर अरमान की खुशी एक अलग ही लेवल पर थी और उसके दिल को एक अजीब सी ठंडक, अजीब सा सुकून पहुंच रहा था और उसकी आंखों के सामने बेजान और बीमार पड़े अभिमान जी नजर आ गए थे। जिस तरह से वसुंधरा एक बेल्ट का इस्तेमाल किया करती थी अभिमान जी को मारने के लिए, साथ ही साथ अरमान को भी मारा करती थी। अरमान अपने पिता को बचाने के लिए अभिमान जी के ऊपर ही लेट जाया करता था, लेकिन वसुंधरा को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया करता था। वो अभिमान के साथ साथ अपने छोटे से मासूम बच्चे अभी अरमान को भी बुरी तरह से मारा करती थी। उस वक्त उसे पर एक अलग की तरह का नशा हावी रहता था। फिलहाल अपने पिता को अपनी आंखों के सामने एकदम सही सलामत देखकर अरमान को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। जल्दी ही अभिमान जी ने अरमान को अच्छी तरह से धोती पहना दी थी। तब जाकर अरमान ने राहत की सांस ली, लेकिन जिस तरह से सभी लोग उस पर हंस रहे थे, ये देखकर अरमान अंदर ही अंदर चिढ़ उठा और खासकर आस्था को घूर कर देख रहा था। दूसरी ओर इस वक्त अरमान का बेटा किसी और की गोद में नहीं बल्कि नानी माँ की गोद में मौजूद था। नानी माँ समझ चुकी थीं कि इस वक्त उनके दामाद जी कितने ज्यादा उदास और नाराज हैं। फिलहाल नानी माँ के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। नानी माँ ने देखा कि पूरा परिवार इस वक्त ऊपर है, तब नानी माँ ने जल्दी से बच्चे को सोफे पर लेटाकर उसे बिल्कुल किनारे पर रख दिया। हालांकि बच्चे की सुरक्षा के लिए नानी माँ ने उस सोफे के ठीक नीचे एक बड़ा गद्दा इस तरह से बिछा दिया था कि अगर बच्चा सोफे से नीचे पलटकर भी गिर जाता तो बच्चे को चोट नहीं आती। और नानी माँ ने कुछ इस तरह से प्लान किया था कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बच्चा सोफे से नीचे गिर जाएगा। जानबूझकर नानी माँ वहां से उठकर साइड में खड़ी हो गई और सोफे के नीचे जो गद्दा बिछाया हुआ था उसे इस तरह से सेट किया कि ऊपर से आने वाले इंसान को केवल बच्चा ही किनारे पर लेटा हुआ दिखाई देगा। वो गद्दा बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा जो कि नीचे ढक कर रखा हुआ था। वहीं दूसरी ओर अरमान आंखों में शैतानी चमक लाते हुए आस्था को देखते हुए बोला, ऐसे दांत क्यों दिखा रही हो आफत? तुम्हें तो मैं रात में देख लूंगा। ये कहते हुए अरमान की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। आस्था अरमान की बातों का मतलब समझकर शर्मा उठी और अब आस्था भी वापस से अरमान के कानों में सरगोशी करते हुए बोली थी, मिस्टर सिंघानिया, वैसे आप इस धोती में बड़े ही हॉट दिखाई दे रहे हैं। आस्था बेबाकी से अरमान को छेड़ने के लिए बातें बोल रही थी, लेकिन आज पहली बार आस्था के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर अरमान के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। और पहली बार अरमान को शर्माता हुआ देखकर आस्था के दिल में हलचल से पैदा हो गई थी और वो दबे आवाज में मुस्कुराहट कर बोली थी, आप शर्माते हुए और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं मेरे क्यूट उपाय। अब जैसे ही आस्था ने ये बोलते हुए अरमान के गाल को खींच लिया, अब तो अरमान पूरी तरह से और भी ज्यादा मुस्कुराने की कोशिश करने लगा था। हालांकि उस वक्त सभी के सभी वहां मौजूद थे और अब वापस आने के लिए तैयार भी हो रहे थे। बाकी सब तो धीरे धीरे नीचे आ गए। रश्मि, दादाजी, ध्रुव, आहान वहां रह गए थे। दादाजी पीछे की ओर मुड़कर रश्मि से कुछ बातें करने लगे थे। वहीं हालांकि अरमान और आस्था बड़े ही धीमे तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे थे ताकि आस्था के अलावा उसकी कही हुई बातें किसी को भी सुनाई ना दे, लेकिन ध्रुव वाहन तो हमेशा कान लगाकर हर एक बात को सुनने के लिए तैयार रहते थे और वो दोनों ही अरमान और आस्था की बातों को सुन चुके थे। और जैसे ही अब उन्होंने आस्था को अरमान के गाल खींचते हुए देखा तो दोनों के चेहरे पर हैरानी बढ़ चुकी थी। वहीं आहान तो जल्दी ही ध्रुव के कानों में सरगोशी करते हुए बोला था, कुछ भी कहो, अगर हमारा भाई डेविल किंग है तो हमारी भाभी भी डेविल क्वीन से कुछ कम नहीं है। देखो कितनी पावर, कितनी ताकत है उनमें। अरे शेर की मूछें खींचने की ताकत रखती है, वाकई मानना पड़ेगा। भाई ने शादी बिल्कुल अपने लेवल की क्वीन से की है, एकदम क्वीन लगती है आस्था भाभी। तभी ध्रुव वाहन से बोला था, अगर फिलहाल उसे तेरे शेर भाई या शेरनी भाभी ने ये बातें सुन ली तो वो हम लोगों को कच्चा भी चबा सकते हैं। तभी आहान बोला, तुमने देखा नहीं, सब लोग इस वक्त इन दोनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये देखो रोमांस में बिजी हो गए। हमें कुछ करना पड़ेगा और मुझे लगता है इनका रोमांस बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला है, और जब तक इनका रोमांस खत्म नहीं होगा मेरे चैंप का नाम कैसे रखा जाएगा। देखो मैं और इंतजार नहीं कर सकता, अब तू मुझे नहीं रोकेगा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये बोलकर और साथ ही साथ ध्रुव वाहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे और दोनों को ही समझ में आ गया था कि उन्हें अब क्या करना होगा। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ प्लान बनाया और आपस में हाईफाई करते हुए चुलबुली मुस्कान से बोले, हो आप सब लोग यहीं पर टाइम वेस्ट करोगे या जल्दी से यहाँ से चलोगे भी? पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, और मेरे प्यारे भैया और मेरी प्यारी भाभी, आप लोग रात के लिए भी तो अपना रोमांस बचा कर रख सकते हैं ना? क्या आप लोगों को अब दिन में ही अपना पूरा रोमांस खत्म करना है? अब जैसे ही आहान ने फनी अंदाज में ये कहा, अरमान उसे घूर कर देखने लगा था। वहीं आस्था शर्मा गई। तब दादाजी का ध्यान अरमान पर हुआ। अब जल्दी ही दादाजी ने अरमान की ओर देखा और आदेश देते हुए बोले, सबसे पहले तुझे जाना चाहिए, क्योंकि तूने सबको लेट करवाया है और तुझे बुलाने के चक्कर में हम सब यहाँ आ गए हैं। अब जैसे ही दादाजी ने अरमान को सबसे पहले नीचे जाने के लिए बोला, अरमान खींच कर रह गया। वैसे तो अरमान आस्था के साथ जाना चाहता था, फिलहाल दादाजी के कहने पर वो सबसे पहले सीढ़ियों से फटाफट दौड़ते हुए नीचे उतरने लगा। लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से आते हुए अरमान की नज़र सीधा हॉल में पड़े हुए सोफे पर एक लाइट ग्रीन कलर के सॉफ्ट कपड़े में लिपटे हुए अपने बेटे पर पड़ी, तो वो बौखला गया, क्योंकि अरमान को लग रहा था कि उसका बच्चा किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। भले ही अरमान को बेटी चाहिए थी, लेकिन अरमान के लिए उसकी और आस्था की औलाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अचानक अरमान का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा और जैसे ही अरमान को ये फील हुआ, अचानक उसने वहां से दौड़कर जोरों से तेज छलांग लगा दी और तेजी से वो अपने बेटे की ओर भागने लगा और साथ ही साथ तेज आवाज में चिल्ला पड़ा, आस्था। ये चिल्लाते हुए वो जल्दी और तेजी से नीचे गया। अरमान की चीख सुनकर सबके सब हड़बड़ाकर बौखला गए और जल्दी ही सबके सब नीचे की ओर दौड़ पड़े। जैसे सबने भी बच्चे को इस तरह से सोफे के किनारे पर देखा, तो उन सबकी भी जान हलक से निकलते निकलते रह गई। वहीं आहान और ध्रुवी, आकाश, सुमित का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह से अंश एकदम किनारे पर लेट होकर उसकी जान इस तरह से खतरे में होगी।
अब आस्था भी जैसे ही तेजी से दौड़कर बच्चे की तरफ जाने को हुई, तो तुरंत नानी माँ ने उसका हाथ थाम लिया और ना में अपनी गर्दन हिला दी और बाकी सबको भी पीछे रुकने का इशारा कर दिया। अब तो सभी लोग हैरानी से नानी माँ की ओर देखने लगे थे। वहीं आहान नानी माँ की ओर देखकर बोला, नानी माँ, आप क्या कर रही हैं? आप हमें जाने दीजिए। तब नानी माँ ने अपना हाथ उठाकर आहान को रोकने का इशारा किया और बोली कि आहान और आप सब चुपचाप देखते जाइए। नानी माँ की बात सुनकर सभी हैरानी से अरमान की ओर देखने लगे थे। वहीं अरमान दौड़कर सीधा अपने बच्चे के पास आ पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर बच्चे की ओर देखने लगा। अरमान पहली बार अपने बच्चे के चेहरे को देख रहा था, जिसकी आंखें बिल्कुल आस्था जैसी लग रही थीं। इस वक्त गोल मटोल सा उसका बेटा उसे दुनिया का सबसे प्यारा और खूबसूरत बच्चा लग रहा था। वहीं उसका बेटा अपनी गोल गोल टिमटिमाती हुई आंखों से इस वक्त अपने पिता अरमान को ही टुकुर टुकुर देख रहा था और अचानक से बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा और कसमसाने लगा, जैसे कह रहा हो, डैडी मुझे गोदी ले लो। अपने बच्चे को हंसता हुआ देखकर अरमान की आंखों से धारदार आंसू बह निकले। ये पहली बार था कि एकदम डार्क हैंडसम अरमान सिंघानिया की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। अरमान जो अब पूरी तरह से जज्बाती हो गया था, आंसू बहाते बहाते उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और आस्था ने अब तक छोटा सा गद्दा देख लिया था, जो कि बच्चे की साइड पर रखा हुआ था। अगर बच्चा गिर भी जाता तो उसे कोई चोट नहीं आने वाली थी और वो समझ चुकी थी कि शायद जो नानी माँ ने बोला था वो आज उन्होंने कर दिखाया। नानी माँ ने आज एक बेटे को उसके बाप से मिला दिया। अब आस्था की आंखों में भी खुशी के आंसू निकल आए थे। जिस तरह से अरमान रोकर अपने बच्चे को गोद में लेकर खुशी से गले लगा रहा था, तो हर किसी की आंखों में आंसू झलक आए और होठों पर मीठी सी मुस्कान। थोड़ी देर बाद आस्था भी घुटनों के बल अरमान के पास जा बैठी और अपने बच्चे के साथ साथ आस्था ने अरमान को भी गले से लगा लिया। उन दोनों को इस तरह से देखकर सब इमोशनल हो गए। सबको रोता हुआ देखकर आहान थोड़ा परेशान हो गया और तुरंत सबके पास जाकर नटखट अंदाज में बोला, ओ मेरी टीवी सीरियल्स की फैमिली, आप लोगों ने ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अरे हमारे घर में नन्हा मेहमान आया है, हमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मनानी है, हमें हंसकर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करना है। और वहां देखो, बेचारे पंडित जी हवन कुंज जलाकर बैठे हुए हैं और वो वहीं बैठे बैठे सूख गए होंगे। अब चलिए फटाफट से लिटिल जैम की नामकरण विधि आगे बढ़ाते हैं। ये बोलकर आहान ने सबका ध्यान नामकरण के समारोह की ओर किया और सभी लोग अब जल्दी ही अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। वहीं आस्था ने अरमान का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उस पल के बाद में अरमान ने एक सेकंड के लिए भी अपने बेटे को गोद से नहीं उतारा था, वो बस उसका खूबसूरत सा चेहरा देखे जा रहा था। जब से उसके पिता ने ये कहा था कि अरमान का बेटा बिल्कुल उस पर गया है, तो उसे खुद से ही चिढ़ महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे खुद से नफरत थी, लेकिन उसे कभी भी अपने बच्चे से नफरत नहीं थी। फिलहाल उसके बेटे की आंखें बिल्कुल आस्था से मिलती जुलती थीं। ये देखकर उसका दिल खुशी से खिल उठा था। वो कभी अपने बेटे की आंखों को चूम रहा था, तो कभी उसके छोटे छोटे प्यारे नन्हे नन्हे हाथों को चूम रहा था, कभी उसके गालों को सहला रहा था। उसके हाथ रोक ही नहीं रहे थे, वो बार बार अपने बेटे को छूकर लाड़ प्यार कर रहा था। ये देखकर आस्था काफी ज्यादा खुश हो गई। पलकें झपकाकर उसने नानी माँ का शुक्रिया अदा किया। अब सारे घरवाले बारी बारी से आस्था और अरमान के लिए चेयर अप करने लगे। जल्दी ही पंडित जी ने दादाजी से आदर से पूछा कि आप बच्चे का क्या नाम रखना चाहेंगे, और तभी सबने उम्मीद भरी नजरों से अरमान की ओर देखा, क्योंकि बच्चे का नाम रखने का अधिकार अरमान को दिया गया था। अरमान ने बिना वक्त गवाए चहकते हुए बोला, मेरे बेटे का नाम होगा अंश सिंघानिया, ये नाम सुनकर सबके चेहरे पर खुशी चमक और बड़ी सी मुस्कान आ गई और सभी ने तालियां बजाकर अंश का वेलकम किया। आज रात आसमान में चांद खिला हुआ था। आस्था खिड़की से चांद की ओर देख रही थी। चांद बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। आस्था को अपनी जिंदगी बड़ी ही खुशनुमा और खूबसूरत सी लग रही थी। ठीक उसी वक्त अरमान ने उसे पीछे से आकर हक किया और अपने होठों को उसके गर्दन के पास रखकर किस करते हुए मधोशी भरी आवाज में बोला, मिसेज आस्था सिंघानिया, मुझे पूरी उम्मीद है आज के बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होंगी, क्योंकि मेरी बेरंग जिंदगी को तुमने अपने प्यार के रंग से भर दिया है। तब आस्था ने मुस्कुराते हुए पलटकर अरमान को गले से लगा लिया और उसके सीने पर अपना सर छुपाकर उसके दिल की धड़कनों को महसूस करने लगी। इस वक्त अरमान के दिल की धड़कन सिर्फ एक ही नाम गुनगुना रही थी, आस्था, आस्था। अंश की जिंदगी में आ जाने पर अरमान की जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। पूरे का पूरे घर में हर रोज एक अलग ही तरह का जश्न सा हुआ करता था। सभी लोगों को अंश के रूप में एक बड़ा ही प्यारा खिलौना मिल चुका था। ध्रुव आहान ने तो अपना काम धंधा पूरी तरह से छोड़ दिया था और सारा दिन अंश के ही आसपास मंडराने लगे थे। इतना ही नहीं, आहान ने तो रेसिंग बॉक्सिंग में जो चीजें यूज होती हैं उन सबसे पूरा का पूरा शोरूम भर दिया था। वहीं सभी लोग अपने अपने तरीके से अंश को प्यार जताने लगे थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे और अंश अब वो पूरे 4 महीने का हो चुका था। सभी लोगों के बीच एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग पैदा हो गई थी। सभी के दिल में बेशुमार एक दूसरे के लिए प्यार था, मोहब्बत थी। दूर दूर तक नेगेटिविटी कहीं से कहीं तक नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां पर ज्यादा प्यार हो अक्सर नजर भी उन्हीं को लग जाती है, और शायद अब ऐसा ही कुछ होने वाला था। कुछ खतरनाक नजरें अब सिंघानिया मेंशन पर पड़ चुकी थीं, और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी दुनिया पूरी तरह से हिलाकर रख दी थी।